हाँ रईस साहब हैं और असगर साहब हैं, तो हम लोग क्या गुफ्तगू कर रहे थे? भाई
अब वो
ये
कुछ
क्रिकेट के
इलेक्ट्रॉनिक्स
मुताल्लिक
के
बता
बारे में
रहे
बता
थे।
रहे थे, हैं?
हाँ,
कुछ क्रिकेट के मुताल्लिक जो आप बता रहे थे, आप उसी
नहीं
को
वो
बताइए
यही
कि
कह
नहीं।
रहा था कि जो मैच हम हार गए इसमें सबसे बड़ी चीज थी वो ये कि हम में विल नहीं थी और एप्लीकेशन नहीं था गेम को जीतने का, वरना वक्त रही साहब काफी था और अगर आराम से खेलते रहते ना तो कोई वजह नहीं थी कि माजिद जहीर और जावेद मियादाद राजा ये कैपेबल लोग हैं और दे आर ओल्ड कंपेनर्स आल्सो, तो दे कुड हैव डन इट, बना लेते वो, लेकिन ये है कि उनके अंदर एप्लीकेशन और नहीं था और विल टू विन जो वेस्ट इंडीज वालों में है कि किसी स्टेज पर भी वो टेबल टर्न कर देते हैं आप पर, बस अगर आपने उनको 100 रन पे आउट कर दिया तो आपको 90 पे आउट कर देंगे, ये बात हमारे वहां प्लेयरों में नहीं है, तो यही वजह थी और मैं समझता हूँ और कोई वजह नहीं है, टीम में कोई बहुत ज्यादा च्वाइस नहीं है, देर इज नथिंग टू चूज बिटवीन द टू टीम्स। एक बात की गुजारिश है कि अक्सर बड़े बड़े क्रिकेटर्स फेल हो गए हैं, ये फ्लॉप होने का भी तो एक
नहीं, ये
उसका एक
तो
खासा
ना सिर्फ ऐसा होता है कि कभी कभी बैड पैच आता है और इसमें दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो 0 पर आउट हो गए हैं, मसलन हाफ ब्रेडमैन और सॉवर, तो इस किस्म के तमाम हेडले वगैरह सारे, तो ये तो एक बैड पैच होता है कभी कभी, लेकिन ये बैड पैच की बात नहीं है, इसमें दरअसल वही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन नहीं था हमारी
मतलब ये तय
टीम
कर
में।
चुके हैं कि हम लोग हारने के लिए
नहीं, खैर तय
प्रोग्राम
तो नहीं
बनाए
कर
हुए।
चुके हैं लेकिन ये कि बाहर का वो जो एक जील होना चाहिए जीतने वाला वो हमारे अंदर अब नहीं रहा गालिबन, वरना टीम हमारी बुरी नहीं है और बहुत अच्छा बड़ी अच्छी बैलेंस टीम है, अच्छे बॉलर्स भी हमारे हैं और हमारे स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा काम किया।
जब वैसे हमारी पहली मुलाकात हुई चिटगांव में तो उस जमाने में वहां क्रिकेट बहुत शौक से,
हाँ मुझे बस वो क्लब क्रिकेट की हद तक खेलता रहा हूँ, यानी मतलब है कि और ग्रेट क्रिकेट
उस
नहीं
जमाने में
खेला हूँ।
पुलिस ग्राउंड पे आपको याद
जी
होगा।
हाँ 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 ठीक है, आपको याद खेला करता था मैं, लेकिन ये कि बस शौक रहा क्रिकेट को फॉलो करता रहा उस वक्त से अब तक और शुरू से।
नहीं लोग कहते क्या बल्कि तजुर्बा भी है कि आप क्रिकेट के सिलसिले में मुताला भी खासा है।
हाँ बस वही मैंने कहा कि फॉलो करता रहा हूँ शुरू से क्रिकेट की हिस्ट्री को, तो
जरा कुछ इस हिस्ट्री के बारे में सही।
पर मैं पहला टेस्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के माबेन जो इंग्लैंड हार गया था, वहां से क्रिकेट की यानी वो इब्तदा हुई है तारीख टेस्ट की, टेस्ट क्रिकेट की, उससे पहले क्लब क्रिकेट इंग्लैंड में खेला जाता रहा तो उसका कोई ऐसा खास रिकॉर्ड मिलता भी नहीं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से आज तक के रिकॉर्ड अलबत्ता आपको विजडन में मिल जाएंगे जो क्रिकेट की बाइबिल है और वक्तन फोक्तन जो रिसाले शाया होते रहे और किताबें भी क्रिकेट।
अच्छा, इस रिकॉर्ड के कुछ अजूबात भी होंगे।
हाँ इसमें अगर आप ये कहें कि साहब इसमें कोई ऐसी बातें जो रिपीट नहीं हुई हैं जो दोहराई नहीं जा सकी, तो उसमें तो एक आर्थर इफेक्ट का एक कंट्रीब्यूशन है कि 1938 में केंट की तरफ से वो खेल रहे थे तो उन्होंने पहली इनिंग में 200 रन बनाए 200 से ऊपर और दूसरी इनिंग में भी 200 से ऊपर बनाए, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दोनों इनिंग में एक मैच में डबल सेंचुरी स्कोर करने का वो रिकॉर्ड अब तक ब्रेक नहीं हुआ। और उसमें एक जो दिलचस्प बात यह है कि उससे पहले कोई 10-11 इनिंग फैक्स आप खेल चुके थे जिसमें मजमूई तौर पर उनका स्कोर 34 या 35 था टोटल 11-12 इनिंग का, तो तवक्को ये थी कि वो ड्राप कर दिए जाएंगे और काउंटी में खेल नहीं सकेंगे, लेकिन वो एक मैच जो उन्होंने खेला केंट के खिलाफ वो एक बड़ी तारीखी हैसियत का हामिल है कि अब तक वो
वैसे लोएस्ट स्कोर का भी रिकॉर्ड जो है वो कोई पुलिस टीम, जो आप मुझे पुलिस भी याद है कि वर्ल्ड लोएस्ट स्कोर उन्होंने पहली इनिंग में वन पूरे टीम सेकंड क्लास क्रिकेट में था,
हाँ
कि फर्स्ट इनिंग्स में वन पूरी स्क्रीन ने टोटल किया और दूसरी इनिंग में जीरो पे पूरी टीम,
जीरो पर पूरी टीम आउट हो गई। नहीं एक ऐसा मैच भी रिकॉर्ड में मिलता है कि जिसमें बगैर कोई रन स्कोर किए हुए बैट से डिसाइड हो गया था, एक टीम बिल्कुल जीरो पर आउट हो गई थी और दूसरी टीम के प्लेयर जब खेलने आए तो पहला रन बाई का था जिससे वो जीत गए, मतलब स्ट्राइक बैट से नहीं हुई, ऐसा भी हुआ है क्रिकेट में। वैसे लोएस्ट स्कोर 12 है ऑक्सफर्ड का और टेस्ट में 26 वेस्ट इंडीज गालिबन न्यूजीलैंड का है जहां तक मुझे याद आता है, ऐसे कोई रिकॉर्ड तो मेरे सामने नहीं है लेकिन मुझे आता कि 26 रन न्यूजीलैंड के हैं। हाँ नहीं न्यूजीलैंड के हैं 26 रन, ये लोएस्ट स्कोर है।
अच्छा उस दिन अफगान साहब आपको जिसके लताइफ सुना रहे थे जो इसमें हुए हैं क्रिकेट में, जो एक बैट साहब बहुत जबरदस्त बैट्समैन थे मैं भूल गया,
अच्छा
तो वो पहले ही बॉल पर आउट हो गए तो उन्होंने भाग लोग यहाँ जमा।
हाँ वो डब्ल्यू जी ग्रेस के बारे में एक लतीफा बयान किया था है कि वो कहीं खेलने गए तो एक जाहिर बहुत मशहूर प्लेयर थे और बैटिंग उनकी देखने के लिए हजारों लाखों आदमी जमा हुए थे, तो इत्तेफाक से बॉलर जो था वो बिल्कुल बेचारा गुमनाम किस्म का आदमी था, पहले ही गेंद पर ग्रेस साहब आउट हो गए लेकिन उन्होंने क्रीज छोड़ी नहीं, तो बॉलर ने जाहिर उनकी रिस्पेक्ट भी करता था इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और इंग्लैंड में तो बाबा क्रिकेट का खिताब है उनका, फादर ऑफ क्रिकेट, तो उसने कहा कि सर आप आउट हो चुके हैं तो आप छोड़ेंगे नहीं क्रीज, यानी वापस नहीं जाएंगे, تو انہوں نے کہا کہ بیوقوف آدمی, انگریزی میں کہا, خیر ترجمہ کر بتا رہا, انہوں نے کہا بیوقوف آدمی, یہ جو تمام لوگ ہزاروں تماشائی آئے ہوئے ہیں یہ مجھے بیٹنگ کرتے دیکھنے آئے ہیں, آپ کو بالنگ کرتے دیکھنے نہیں آئے, آپ اپنا کام جاری رکھیں گے, دیکھتے رہیں. یہ
گریس کے بعد ایک کیپٹن تھے انگلینڈ کے, جے ڈبلیو ایچ ٹی ڈگلس.
ہاں,
وہ سنا ہے کہ دن دن بھر اگر کھڑے رہے تو کوئی رن نہیں مارتے, لٹرلی تین گھنٹے چار گھنٹے تک کریز پہ رہے اور رن کوئی نہیں بنایا, اور ان کا جے ڈبلیو ایچ ٹی سے ان کا نام بعد کو لوگوں نے جانی وونٹ ہٹ ٹوڈے ڈگلس.
ہاں, ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے نہیں کریز پہ کھڑے ہو کے بڑا وقت ضائع کیا, مثلا میکگلو صاحب نے
ہمارا یا اپنا,
اپنا بھی اور دیکھنے والوں کا بھی. ہاں, جیسے ساؤتھ افریقہ کے میکگلو تھے, انہوں نے 500 منٹ سے زیادہ لیے سنچری بنانے میں, وہ ریکارڈ ہمارے مدثر نظر نے بریک کر دیا کوئی 3-4 منٹ سے لاہور میں, انہوں نے اس سے زیادہ دیر میں اپنی یعنی سنچری مکمل کی. تو ایسے بیلی بھی خاصا وقت ضائع کرتے رہے, وہ بھی انگلش کرکٹ میں, لیکن یہ کہ وہ اکیجنلی کرتے تھے جب اس کی ضرورت ہوتی تھی, بیلی یعنی ہٹ بھی کرتے
تھے, وہ تو ہاں نہیں, وہ تو اچھا سکور بھی کرتے تھے, لیکن یہ ضرور تھا کہ کبھی ضرورت پڑے صرف بیک کرنے کی,
وہ سٹینڈ دے سکتے تھے,
گھنٹوں کھیل
لیتا, وقت کو ضائع کر سکتے تھے.
نہیں صاحب, وہ ایک لطیفہ سنا رہے تھے اصغر صاحب, انہی کی زبانی اچھا رہے گا کہ وہ ایک کرکٹر کھیل رہا تھا, کوئی آؤٹ ہو گیا, اس کو آؤٹ نہیں دیا, تو ان سے پوچھا گیا.
ہاں, ویسٹ انڈیز میں یہ کلب کرکٹ کا واقعہ ہے کہ فارن کی ایک چھوٹی سی ٹیم آئی تھی, غالباً خیال انگلینڈ سے ہی گئی تھی, تو اس نے آؤٹ کر دیا اوپننگ بیٹس مین کو, تو امپائر نے آؤٹ دیا, نہیں بات کلیئر آؤٹ تھا, تو بہرکف لوگوں نے سمجھا کہ شاید امپائر مس کر گیا ہے, تو پھر گیند جاری رکھی, اس کے بعد پھر وہ کلیئر ایل بی ڈبلو ہو گئے, پھر بھی امپائر نے آؤٹ نہیں دیا, تو تیسری بار وہ کیچ ہو گئے اور بہت ہی کلیئر کلیئر تھا, تو مخالف ٹیم کا کپتان آیا, اس نے امپائر سے کہا, کہا صاحب یہ آؤٹ نہیں ہوئے, آخر کیا وجہ ہے, 3-3 بار ان کو ہم آؤٹ کر چکے ہیں اور آپ آؤٹ نہیں دینے, تو ان کا کہ یہ میئر کے صاحبزادے ہیں. تو وہ بےچارے چپ ہو گئے, خیر اس کے بعد ان کو کلین بولڈ کر دیا. اس کے بعد دوسرے بیٹس مین صاحب تشریف لائے, وہ بھی 2-3 بار آؤٹ ہوئے, تو ان کے متعلق بھی پوچھا گیا کہ صاحب آپ ان کو آؤٹ نہیں دینا, تو کہا کہ شریف کا بیٹا ہے, تو ان کو بھی کلین بولڈ کیا مخالف ٹیم نے. آخر میں ایک بہت ہی مرغلے صاحب تشریف لائے اور وہ آتے ہی پہلی گیند پہ بولڈ ہو گئے, لیکن امپائر صاحب نے ان کو آؤٹ نہیں دیا بلکہ بیل درست کر دی اور بالر کو اشارہ کیا کہ آپ گیند جاری رکھیں, تو کپتان گئے بہت خفا ہو کر, کہنے صاحب یہ تو بہت ہی انصاف بے ایمانی کر رہے ہیں آپ, اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کو آؤٹ نہیں دیا, ان کا کہ یہ میرا بیٹا ہے. جو اس قسم کے لطیفے ناز صاحب ہوتے رہتے ہیں کرکٹ میں, یہ بڑا تو گیم آف گلوریس انسرٹینٹیز.
سر ذکر تو نہ صرف کرکٹ ہی کا کر رہے ہیں آپ ویسے, لیکن لطیفوں میں یہاں بات آئی تو اظہر بھائی بہت ایکسپرٹ ہیں ویسے تو لطیفے سنانے میں, ہمیشہ
لطیفے کا ظاہر صاحب جب تک کوئی اکیجن نہ ہو اس کو یعنی فورس کرنا لطیفے کو کسی محفل میں اس خاطر کہ لطیفہ سنایا جائے کوئی اچھا نہیں لگتا, لیکن کسی موضوع سے متعلق کوئی بات ہو تو
موضوع سے متعلق بات تو ہے. بات یہ ہے کہ اس میں وہ آپ نے جو لطیفے سنائے اتفاق سے وہ ہم دونوں موجود تھے اس میں اور محظوظ ہوئے, اب قند مقرر کے طور پر آپ نے وہ جو فرمائش نہیں
سنی, موضوع آپ بتائیں تو اس سے متعلق کوئی لطیفہ.
میں دو دفعہ ذکر کر چکے ہیں کرکٹ میں ایک پولیس کی ٹیم آؤٹ ہونے کا, ایک آپ کے پولیس گراؤنڈ سے کھیلنے کا, تو اب اس سے ہی موضوع نکلا کہ ایک آپ کی سائیکل پھنسی تھی چٹاگانگ میں, وہ سنا دیں پولیس گراؤنڈ میں.
بھائی وہ واقعہ نہ بیان کیا جائے تو بہتر ہے کہ اس میں ایک محکمہ کی بڑی,
اس میں کوئی محکمہ
نہیں, وہ ظہیر صاحب اس پر یعنی مطلب یہ کہ بات ریکارڈ پر آنے والی نہیں, گڑ والا لطیفہ بھی نہیں. اب اس میں لطیفہ آپ سنا چاہتے تو میں ایک آدھ لطیفہ آپ کو یوں سنا دیتا ہوں.
نہیں یہ تو یعنی
مطلب یہ ہے کہ کرکٹ سے متعلق ہی لطیفہ کوئی آپ کو سنا دیتا ہوں اچھا سا. مثلا یہ کہ ایک بار سرے سے ایک ٹیم گئی کہیں سوبر میں کھیلنے, تو بالر ان کا بہت فاسٹ تھا, تو جو بیٹ مین صاحب تشریف لائے دیہات کے سوبر کے بیٹنگ کرنے, وہ وہاں اتفاق سے لوہار کا کام کرتے تھے, تو بالر نے گیند پھینکی تو ان کے بیٹ سے ٹچ نہیں ہوئی, ان کو نظر بھی نہیں آئی, دوسری بار اس نے پھر پھینکی تو نظر نہیں آئی, تیسری بار اس نے کریز کراس کی تو امپائر نے نو بال کا اشارہ کیا, یعنی آواز دی کہ نو بال, تو وہ لوہار صاحب تشریف لائے امپائر کے پاس, انہوں نے کہا کہ پہلی دو مرتبہ جب اس نے پھینکا تھا جب بھی اس کے ہاتھ میں گیند نہیں تھا, اسپیڈ اتنی تھی کہ ان کو گیند نظر ہی نہیں آ رہا تھا.
نو بال سے کیا,
تو وہ نو بال سے بےچارے وہی سمجھ رہے تھے کہ امپائر نے یہ کہا کہ اس کے ہاتھ میں گیند نہیں ہے اس بار, تو انہوں نے کہا نہیں صاحب پہلی بار جو مرتبہ پھینکی تھی تو جب بھی گیند.
یہ بتائیے کہ اب آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ آپ کرکٹ سے اتنی دلچسپی ہے کہ ایک کھیل جو کہ 5 دن تک لگاتار کھیلا جاتا رہے, ظاہر ہے کہ پیکر کے زمانے میں یہی ہو گیا ہے کہ پیپل وانٹ کوئک ریزلٹس.
ہاں
तो ये पांच दिन खेलने के लिए अब उसमें क्या पॉसिबिलिटी रही है कि पांच दिन तक आप अपने नौकरी से छुट्टी लेके और वहां जाके खेल देख सकेंगे?
हाँ नहीं, असल में ये एक ब्रिटिश ट्रेडिशन है और एक लार्फ का खेल इसको कहा भी जाता था, जिसमें वक्त और पैसा तमाम चीजें यानी फ्रास से जाया।
नहीं तो अब आपका क्या ख्याल है, क्योंकि लॉर्ड्स खत्म हो गए तो क्या ये खेल खत्म हो
जाएगा? देखिए ना, वनडे क्रिकेट तो इंट्रोड्यूस हो गया है और डबल विकेट क्रिकेट कम्पिटिशन भी हो रहे हैं, तो ये तेज हैं और इसमें यानी देखने वालों की दिलचस्पी बरकरार रहती है और दिन भर में ये खेल खत्म हो जाता है और ये पॉपुलर भी हो रहा है।
नहीं, देखिए जैसा क्रिकेट हमें जिसकी आदत थी हमें टेस्ट मैचेस वगैरह की, ये आपके ख्याल में खत्म हो जाएंगे?
ये तो नहीं कह सकता कि खत्म हो जाएंगे, इसलिए कि बहर कैफे ट्रेडिशन है, अब सदियों से चला आ रहा है और
अब ट्रेडिशन से तो बेचारे प्लेयर्स का पेट नहीं भर सकते ना हम लोग,
उन्हें पैसा देना है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये टेस्ट क्रिकेट की वजह से उनको काफी माली मुनफियत भी होती है, एक दिन का की जो पेमेंट मिलती है वो उनको पांच दिन के खेल में या छह दिन के खेल में नहीं मिलती है, और जाहिर है कि उनका प्रोफेशन ही यही हो गया जो हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान में या दुनिया के दूसरे मुल्कों में, वेस्ट इंडीज में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, ज्यादातर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स यही है, कुछ हिंदुस्तान में भी दो चार हैं, तो इनकी आमदनी का जरिया ही है, बेचारे पूरा सीजन खेलते हैं, इंग्लैंड में भी खेलते हैं और अपने वहाँ भी खेलते हैं, तो इनके लिए ये सूट करता है इनको। मेरा ख्याल है जो पेमेंट इससे मिलती हैं, अब हमारे वहाँ 11,000 रुपये की पेमेंट हो गई, वनडे क्रिकेट की तो इतनी पेमेंट नहीं मिलेगी किसी को, तो ये जाहिर है कि उनकी रोजी का जरिया भी हो गया इससे।
जैसे बेसबॉल बहुत ही पॉपुलर है, अब 9 इनिंग्स दो टीम्स खेल लेती हैं 2-3 घंटे के अंदर, 9 इनिंग्स, तो ये सब क्रिकेट में तो बहुत मुश्किल
नहीं। उसी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये वनडे क्रिकेट जो शुरू हो गया है या कंपटीशन डबल विकेट कंपटीशन वगैरह, ये इसी वजह से है कि कम वक्त आया हो और पूरी थ्रिल और पूरी क्रिकेट के गेम की पूरी फजा भी कायम हो जाए और कंपटीशन की स्पिरिट भी रह जाए।
कल हम लोग बैठे बातें कर रहे थे
जी, हाँ,
तो वो ये लाइब्रेरियां जो बड़ी बड़ी बनी हुई हैं,
हाँ,
अब ये एक शेल्फ में रिड्यूस हो जाएंगी, ये एक बता रहे थे।
हाँ, जी साहब कह रहे थे
माइक्रो फिल्मिंग और माइक्रो फिश।
हाँ, 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 ये हो जाएंगी,
तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में सामीन के लिए यकीनन ये एक
चूंकि देख के आ रहे हैं अभी, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स टुडे एक रिसाला निकलता है,
अच्छा,
उसमें आज खासतौर पर यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है कि उसमें ये जितनी लाइब्रेरीज हैं, एक तो जगह बेताशा घेरती हैं और फिर किताबों का वजन। इससे पहले मैं ये बता दूं ना सर, कि एक लतीफ़ा ये हुआ कि कुछ दिन पहले अमेरिका में हम गए तो एक किताब हमने मांगी वहाँ पर, और वो वहाँ पे पेपरबैक्स में मिल रही थी,
अच्छा,
लेकिन जैसे कि आप जानते हैं मुझे किताबें मैं हार्ड कवर में खरीदता हूँ ताकि अपनी लाइब्रेरी में भी रख सकूं, तो हमने कहा कि हार्ड कवर की चाहिए। हार्ड कवर की किताब कोई $12 की थी,
अच्छा,
वो सेल पे उसी दुकान में $1 की मिल रही थी और पेपरबैक $1.95 की नई,
अच्छा,
दोनों नई थी। तो मैंने उनसे कहा था हार्ड कवर की किताब सिर्फ $1 में रह गई, तो उन्होंने कहा कि साहब ये जितनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज वगैरह खरीदना चाहते हैं, हाँ, वो तो खरीद चुके,
अच्छा,
अब जाहिर है क्योंकि खरीदने वाला ने अब इतनी मोटी किताब लेके जाए घर में जगह ऑक्यूपाई करे, कोई हवाई जहाज में पढ़ना चाहे तो ये वजन साथ हो, तो लिहाजा कोई खरीदता नहीं है। और एक सबसे बड़ा इस किताब का नुकसान ये कि जब पढ़ चुके हैं और इसको गार्बेज यूनिट में डालते हैं तो उसके चॉपर ब्लेड जो है वो फंस जाते हैं कार्डबोर्ड से, लिहाजा, अच्छा, किताब पॉपुलर नहीं।
अच्छा,
किताब जब तक डिस्पोजेबल ना हो तब तक उसको पढ़ना भी दुश्वार। तो इसीलिए लाइब्रेरीज कहते हैं कि उन्होंने एक तो खैर माइक्रोफिश और माइक्रोफिल्म तो सभी जगह कर रहे हैं, लेकिन एक कॉरपोरेशन ने अभी कहा है कि 3-4 साल के अंदर अंदर वो लोग रेफरेंस बुक्स तो छापना बंद कर देंगे सारी, और वो आपको पर्सनल कंप्यूटर्स घर पे जो होंगे लोगों के टर्मिनल्स,
अच्छा,
उन पे मिले घर पे टर्मिनल्स तकरीबन $1,000 या $700 का मिलता है,
अच्छा,
जिसमें टाइप राइटिंग कीबोर्ड होता है,
अच्छा,
एक टेलीविजन जैसी स्क्रीन होती है और उसमें आप जो कुछ फीड करें डेटा जैसा कंप्यूटर प्रोग्राम करें पूरा वो कर सकते हैं, और एक टेलीफोन मॉडेम मिलता है जिससे आप कनेक्ट कर लें तो अमेरिका के किसी और कंप्यूटर से आप टेलीफोन करके डायल करके आपका कंप्यूटर उस कंप्यूटर से गुफ्तगू करके आपको जवाब दे देता है।
हाँ, ये जो वेलफेड कंप्यूटर है,
जो वेलफेड कंप्यूटर है आप किसी से कर लें। इंग्लैंड में अभी टेलीटेक्स्ट और व्यू डेटा सर्विस शुरू की है कि आपके अपने टेलीविजन पे आप ये कनेक्ट कर दें और आपको जैसे हवाई जहाज के औकात मालूम करना है तो आपने वहीं से कंप्यूटर से डायल किया तो वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे जितनी फ्लाइट्स हैं उनके चार्जेस वार्जेस सब डिस्प्ले करते
हैं। अच्छा, जो वहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं वो आप करें।
दो तीन दुकानों ने अभी ये शुरू किया है कि अगर आपको कोई चीज खरीदना है तो आप उनको डायल करें तो वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे वो अपनी पूरी कैटलॉग और उसके प्राइसेस और तस्वीर दिखा देते हैं। जो आइटम आपको चाहिए आप उसका नंबर प्रेस कर दीजिए, शाम को वो आदमी डिलीवर करता है आपके घर पे।
माशाल्लाह भाई, वाह।
तो इसी तरह से इन्होंने रेफरेंस बुक्स के साथ ये किया कि रेफरेंस तो आप डायरेक्टली इस पे ले लें,
अच्छा,
सवाल इसी से पूछ लें, ये आपको जवाब दे देगा। उसके अलावा ये कि कोई किताब अगर मतलब मेरा जैसा आपका जैसा कोई आदमी जिद्दी है कि उसको किताब ही चाहिए हाथ में, तो वो जाए इनकी दुकान पे और उनको बताए कि कौन सी किताब चाहिए, तो ये आपसे टाइप सेट किताब का साइज ये पूछ लेते हैं,
अच्छा,
اور اس کے بعد وہ ڈائل کریں گے اور اپنے مین کمپیوٹر سے بتائیں گے کہ یہ کتاب چاہیے, وہ وہاں اس سائز پہ چھاپے گا اس کتاب کو اور وہ فیکسیمیلی ریکارڈر کی طرح جیسے ٹیلی پرنٹرز ہوتے ہیں اس طرح وہ تھرو آئے گی اور وہ یہاں پہ دراز میں کھول کے آپ کو یہ کتاب نکال کے دیں گے.
اس میں کتنا,
ان کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 200 صفحے کی آرڈنری ناول 1985 وغیرہ میں جب یہ کر لیں گے اپنے اسٹیبلش تو 35 سیکنڈ میں ایوریج پہ 200 صفحے کی کتاب دے دیں کریں گے
آپ کی پسند کا ٹائٹل
اور تقریباً $5 یا $6 کاسٹ آئے گی ان کی اس زمانے کی $5-6 میں آج کوئی روپے کی برابر ہو جائے گی جس ریٹ سے انفلیشن چل رہا ہے. تو ویسے تو واقعی لگتا ہے کہ بالکل یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن وہاں جا کے جو ڈیمونسٹریشن ان چیزوں کے دیکھے,
اچھا
جو کوئی مثلا چیس کے جو کمپیوٹر ہیں, کوئی اینی ویک ایک کمپیوٹر تھا کوئی 10 سال پہلے جس سے آپ چیس کھیل
سکتے,
اس میں 28,000 ویلز تھے, 30 ٹن اس کا وزن تھا اور ایک باسکٹ بال فیلڈ کے برابر کمرے میں موجود تھا
رکھا جاتا تھا.
اب $50 کا ملتا ہے, آپ کی میز پہ آتا ہے یا بریف کیس میں آتا ہے,
اچھا
3,24,000 مووز وہ کمپیوٹ کر کے اپنا جواب دیتا ہے آپ کو, 4 بیٹریز پہ چلتا.
اچھا اچھا, آپ کھیل سکتے ہیں اس کے ساتھ؟
ہاں دن بھر کھیل سکتے ہیں. میں لے کے آیا ہوں, اس میں 8 لیولز ہیں بگنر سے لے کے ایکسپرٹ تک.
اچھا اچھا,
اس کا نیا ورژن نکلا ہے, وہ وائس کمپیوٹر کے ساتھ ہے وہ, تو وہ آپ 4 زبانی اس کو بتائیں وہ زبانی آپ کو جواب دیتا ہے.
اچھا,
اور اس میں دنیا کے 64 بہترین گیمز جو اب تک کھیلے جا چکے ہیں وہ بھی اس میں ریکارڈڈ ہیں, تاکہ اگر آپ فشر کے خلاف کھیلنا چاہیں کہ اسپیس کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے, وہ بھی کرتا ہے. وہ شاید کوئی $150 کا ہے اور پچھلے سال وہ $300 کا تھا, اس سال $150 کا ہے.
ہاں
جس ریٹ سے بڑا چیزیں بننا شروع ہو رہی ہیں تو بہت ہی آسان. برج کا بھی ملتا ہے وائس چیلنجر, گورین کلبرٹسن کے خلاف ان دونوں کو ٹیم کر کے ان کے خلاف آپ اور آپ کا پارٹنر برج کھیلیں.
واہ کمال,
بہت ہی لوگ
اب آپ ورلڈ ماسٹرز کے خلاف کھیل سکتے ہیں اپنے گھر میں.
اور ٹیلی ویژن کا تو یہ ہے کہ اب تقریباً 2 ملین ہاؤسز نے بتایا تھے کہ کمپیوٹر ان کے گھروں میں آ چکے ہیں امریکہ میں, یعنی 58 ملین فیملیز, اس میں سے 2 ملین فیملیز میں کمپیوٹر گھر پہ آ چکا ہے. اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 1989 تک شاید کوئی مکان ایسا نہ ہو جہاں کمپیوٹر اگر انہوں نے خود نہ خریدا ہو تو وہ زبردستی نہ لگوا دیا. اس لیے کہ فرانس نے مثلا یہ کر دیا کہ 1982 سے ٹیلی فون ڈائریکٹریز فرانس نہیں چھاپے گا, اس کے بجائے آپ کا ٹیلی فون سسٹم لے جائیں گے وہ, اور آپ کی کمپیوٹر فون آپ کے گھر میں لگا دیا جائے گا. تو جب آپ کو ڈائل کرنا ہو کسی کا نمبر تو اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اس کے ٹائپ رائٹر کی بورڈ پہ ان صاحب کا نام چھاپ دیں تو وہ ٹیلی فون نمبر ڈائل کر دے گا, ڈھونڈنے کی آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی.
یعنی وہ کمپیوٹر اتنا فٹ ہوگا گویا پوری ڈائریکٹلی کمپیوٹر کو فیڈ کر دیں گے.
پروگرام ہو گیا, بہت ہی سمپل پروگرام ہو گیا. واقعی بہت اچھا, اس میں گیمز بہت اچھے ہیں, یہ بیس بال اور چیزیں وغیرہ جو ہیں یہ اسکرین پہ آتی ہیں. اب کرکٹ بھی میرے خیال میں انگلینڈ میں شاید نکالے گا,
ظاہر ہے یہ ان کا سب سے زیادہ پاپولر گیم ہے کرکٹ انگلینڈ.
ٹینس آلریڈی اویلیبل.
اچھا دادا صاحب, یہ جو چیزیں ہم اس وقت سن رہے ہیں جو حقیقت ہے اور ظاہر اس کے مشاہدہ بھی کر کے ذریعے صاحب آئے, تو آپ تو تلسم ہوش ربا پہ قاری رہے ہوں
جی. ہاں
بچپن
میں, ہاں اس میں ہاں ایسے چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک خیال تھا اور اب اس خیال کو ہم مثلا ہاں اڑتے ہوئے تخت وغیرہ کا ذکر ملتا تھا کہ صاحب وہ ہوادار اڑ کے آئے اور کیا نام ہے گئے اور پریاں تخت کو اٹھا لے گئیں وغیرہ. تو اب آپ رات دن ہوائی جہاز و ہیلی کاپٹر تمام جیٹ سروس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں.
جیسے ویڈی فون انہوں نے کہا ہے کہ جیسے آپ ٹیلی فون ڈائل کریں دوسرے کے یہاں تو صرف آواز نہیں, آپ کی
تصویر بھی
آ جاتی ہے
جی,
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کون بات کر رہا ہے
جی.
تو اب وہ ٹیلی ویژن ہی سائز کی اسکرین, وہی پرنسپل اسکرین کا
تقریباً,
اور ٹیلی ویژن اب چھوٹے کر کر کے جیسے سنکلیئر نے اور مائکرو ویژن وغیرہ نکالے ہیں, 1 انچ کا سائز کا ٹیلی ویژن ہے کی چین پہ رکھا ہوا آپ کے. تو اگر اسی کو اور منیچرائز کر دیں اور آپ انگوٹھی پہ لگا دیں تو تلس میں ہوش ہوگا کہ انگوٹھی سے مختلف ہوگا کہ آپ نے وہاں بٹن دبایا اور آپ نے دیکھ لیا کہ فلانی بیگم کیا کر رہی ہیں,
فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے, کس کے اور کون سا پروگرام آ رہا ہے.
تو کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ دیکھ چکے ہیں پہلے؟
نہیں, میرا خیال ہے یہ نہیں. دیکھیے ایسا ہے زہیر صاحب کہ بعض کتابیں اور شواہدات ایسے ملتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا نے تمام چیزیں دیکھی تھیں. آپ کے پاس ایک کتاب میں نے ایک زمانے میں آپ سے لے گیا تھا میں, جس میں اس قسم کی چیزوں کا ذکر تھا کہ وہ
ہاں اس زمانے میں بک کیپنگ سیکھ رہے
ہیں, رکھ لی, اس وقت چوری کی عادت ڈیولپ نہیں ہوئی تھی کتابوں کی. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کچھ آپ کے وہ ایسٹروناٹس وغیرہ کی تصویریں, چیریٹ آف دی گارڈس میں غاروں میں ایسی تصویریں ملی ہیں جیسے ہمارے آج کل کے ایسٹروناٹ ہوتے ہیں, یا ہمارا جو وہ راکٹ یا وہ جو گاڑی جاتی چاند گاڑی جس کو آپ کہتے ہیں, وہ اس قسم کی تصویریں ملی تھیں. تو یعنی یہ حیرت انگیز بات ہے کہ صاحب ان چیزوں کا ذکر آج سے 50,000 سال پہلے بھی ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ دنیا ایک بار یہ ترقی کر کے ختم ہو چکی ہو, اور پھر جیسے چاند کے بارے میں ایسٹروناٹس نے کہا کہ صاحب ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں رہ چکے ہیں, इसलिए जो तबाही चांद पर आई है और जो पूरा चांद जल गया है, पूरी जमीन स्याह हो गई है, तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि शायद हम यहाँ पहले रहे हों। तो जिस तरह आज यानी हाइड्रोजन बम और केमिकल बम से तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो अगर कोई यानी आलमी जंग छिड़ जाए और ये सारे हरबे इस्तेमाल कर दिए जाएँ तो हमारी ज़मीन की कैफियत वही होगी जो आज चांद की है। तो फिर हो सकता है कि 50,000 साल के बाद फिर कायनात
के वेपन्स का आपने संकेत मुझे याद आया कि आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था
जी
कि तीसरी आलमी जंग में किस किस्म के हथियार इस्तेमाल होंगे
जी।
तो उसने कहा कि ये तो मुझे नहीं मालूम, डिपेंड करता है कि मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के 10 साल के बाद हो के 50 साल के बाद हो, लेकिन ये मालूम है कि अगर उसके बाद चौथी हुई तो उसमें क्या इस्तेमाल होंगे। तो उन्होंने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा पत्थर मारेंगे।
तो पत्थरों का जमाना वापस आ जाएगा। सही, तो हो सकता है कि फिर हम पत्थरों के जमाने से यहाँ तक आ गए हैं और ये चीज़ें पहले रही हों। यानी इसको बिल्कुल मुस्तरद तो नहीं किया जा सकता, वैसे यकीन नहीं आता कि इंसान इतनी तरक्की पहले कर चुका हो, लेकिन इसको बिल्कुल मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता। इसलिए कि ऐसे शवाहिदात हैं कि जिनके बिना पर हम कह सकते हैं कि आदमी एस्ट्रोनॉट रह चुका है या चांद पर जा चुका है और चांद गाड़ियाँ बन चुकी हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें यानी ऐसी बहुत सी यानी एविडेंसेस मिलती हैं।
तो वो आपने वो तख्त परियों वाली बात जो की
जी
देखिए क्रिसमस हो शुभ उससे थी
जी,
वैसे कुछ जो मसल एक मतलब आप बता रहे थे कि बंगाल में
हाँ वो तूफान आया था।
तूफान
हाँ, तो एक साहब बड़े पुराने वहाँ बैठे हुए थे, तो तूफान तो बड़े बरस आया था। ये साइक्लोन जो इस पाकिस्तान में आते थे, इसमें हजारों आदमी मर गए थे, आपने अखबारात में पढ़ा होगा। और हवा इतनी तेज थी नासिर साहब कि मैंने खुद अपनी आँख से देखा कि दरख्तों की पत्तियां जल रही थी, यानी फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन इतना ज्यादा था। तो खैर जब ये खत्म हो गया तो सुकून हो गया और बिल्कुल हवा रुक गई और एक लल सतारी हो गया पूरी फ़ज़ा में। तो घर से हम निकले तो एक छोटा सा होटल था जो कुछ पक्के मकानों के बीच में घिरा हुआ था, तो उस पर इसका असर तूफान का नहीं आया था, वो होटल खुला हुआ था। तो हम चले गए उसमें लोगों के तासुरात जानने के लिए, जैसे कि वहाँ पुराने लोग बैठे थे। हमने कहा कि शायद इस मुल्क में से, हम तो बंगाल में नए गए हुए थे उस ज़माने में, तो हमने कहा कि पूछें लोगों से कि ऐसे तूफान कभी पहले यहाँ आए हैं। तो वहाँ साहब कुछ फजाई और थी। एक बड़े मियाँ कहते थे साहब कि मैंने तो देखा कि ये देव और परियों की जंग थी और देवों का लश्कर जा रहा था साहब परिस्तान पर हमला करने के लिए, और जो देवों के परों से जो हवा पैदा हो रही थी उससे ये तूफान आया है। साहब अभी हम वहाँ भी हैं, यानी हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन तूफानों को इन चीज़ों का नतीजा समझते हैं कि परियों और देवों की जंग हो रही है। और अभी जैसे साहब इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र कर रहे हैं, देखिए हम दुनिया में कितने पीछे रह गए हैं। और हमने साइंस में तरक्की इसलिए भी नहीं कि हम इन्हीं रवायतों में पड़े रहे, मतलब कि अब आप गुफ्तगू करें, जब किसी से तो कह के साहब कि टेलीफोन तो हमारे वहाँ ईजाद हो चुका था और साहब फला चीज़ हमारे वहाँ फला बुजुर्ग ने ईजाद की थी अब्दुल जब्बार बिन यूसुफ ने, तो ये सब कुछ हम बयान करते रहते हैं। और साहब दूरबीन फला ने ईजाद की थी और फला तेजाब जो था जाबिर बिन हय्याम ने उसका पता लगाया था और आँख के कर्निया का सबसे पहला ऑपरेशन इब्न हज़म ने किया था। तो यही हम पढ़ते रहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो जितना पैसा
अच्छा, वो लोग सब हमारी किताबें पढ़ के करते
हैं। तो मैं समझता हूँ जितना पैसा इस पर सर्व किया जा रहा है कि साहब ये बताया जाए कि हमने क्या किया था, उसके बजाय अगर वही फंड डाइवर्ट कर दिया जाए आज की यानी तालीम में कि साहब आज के हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ें और वो सीखें और वो करें, तो इससे ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके कि मुसलमानों के साइंस पर एहसान गिनवाए जाएं, मुसलमानों से कुछ एहसान करा दिए जाए साइंस पर। क्या ख्याल है?
हाँ बिल्कुल
नहीं
बिल्कुल,
यानी हमने काफी वक्त
क्योंकि ये जरूरी है भाई बताया जाए क्या किया, क्योंकि इससे एक प्राइड
प्रोफेशन के लिए आती है, इसको बार बार रिपीट करने से
पता चले कि
हम आज क्या कर रहे हैं।
अब बेमानी सा हो गया
है, हम क्या कर रहे हैं। यानी ठीक है हमारे बुजुर्ग ने टेलीफोन ईजाद कर दिया था लेकिन हमको तो टेलीफोन नहीं मिला, टेलीफोन तो हमने बेलीग्राहम की ईजाद करा, यानी हम टेलीफोन इस्तेमाल करते, हमारे बुजुर्ग जो फला बिन फला थे उन्होंने तो ईजाद किया था, तो रख के रहेंगे अपने पास।
नहीं
क्यों ना करें, टेक्नोलॉजी हमारे पास स्टूडेंट्स बड़े ब्राइट है, हमारे पास बहुत ज़हीन
ये तो है। नहीं वैसे अमेरिका में और विलायत में और कई जगह आप जाएं तो वहाँ पे आपको साइंस की फील्ड में पाकिस्तानी बहुत
बहुत मिलेंगे साहब आपको,
और बहुत
तो अगर हम
उनको करते, बड़ी खुशी से वापस आ जाएं अपने मुल्क में, क्योंकि जाहिर अपनी बीवी बच्चों से घर से माँ बाप से दूर कौन रहना चाहता है,
अगर उनको यहाँ मौके मिले
मतलब खुशी से वापस आ जाएं, अगर मौके
उनको हाँ यानी पढ़ने के मौके मिले, उनको
किताबें जमाने में
उनको इक्विपमेंट सप्लाई किए जाए, और गवर्नमेंट सप्लाई
जो मुसलमान ममालिक के पास माशाल्लाह से है अरब ममालिक में, हम ये सब अगर इधर चैनल किया जाए तो जमाने में फिर मुसलमान
पाकिस्तान इसकी बहुत अच्छी नर्सरी बन सकता है। पाकिस्तान इसकी सबसे अच्छी नर्सरी बन सकता है और यहाँ से ऐसे साइंसदान पैदा हो सकते हैं कि जो पूरी दुनिया में यानी छा जाए।
बिल्कुल बिल्कुल,
लेकिन उससे तो तवज्जो नहीं दी जा रही, ये बताया जा रहा है कि साहब पहला ऑपरेशन फला ने किया था और कैंसर का फला इलाज फला ने कर लिया था, ये मैं हिंदुस्तान में यानी گیا تھا تو وہاں بھی میں نے کتابوں میں دیکھا کہ صاحب راج پھوڑا جس کو کینسر کہتے ہیں اس کو ہندی میں راج پھوڑا کہتے ہیں, وہ بھی یہی بتاتے رہتے ہیں کہ صاحب راج پھوڑے کا آپریشن آج سے 3000 سال پہلے وکرمادتیہ کے عہد میں فلاں نے کیا تھا. اب کیا ہوگا, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم اسی میں برباد ہے کہ پدرم سلطان بدھ